Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Kathopanishad, presented by Swami Sri Pranavanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Uske liye koi kriya chahiye, bina shabd, bina kriya. बिना वस्तु हमारा क्रोध कभी बाहर नहीं निकलता है। आपके अंदर क्रोध उठा, अंदर क्रोध आया, और वो क्रोध क्या करता है? शब्द खोजता है। फिर कभी आप ध्यान देना, वो क्या करता है? अच्छा से अच्छा शब्द खोजता है वो, और शब्द के माध्यम से क्रोध बाहर जाता है। क्रोध क्रिया चाहता है। थप्पड़ मारने के लिए आदमी हाथ उठाता है कि नहीं? कान, बच्चे हो तो कान पकड़ के खींचता है, लौटता मरोड़ता है। ये क्या है? ये क्रिया। क्रोध ने क्या किया? क्रिया का आश्रय लिया और वो क्रोध बच्चे तक पहुंचा। आप अच्छी गाली देते हैं, गाली के द्वारा आपका क्रोध बाहर पहुंच गया। समझ में आया? क्रोध बिना शब्द, बिना क्रिया, बिना वस्तु कभी बाहर नहीं आता है। और जब वो बाहर आता है ना, तो नारायण वो और बढ़ जाता है, घटता नहीं है। आप जितना उसको शब्द और क्रिया देते जाओ, उतना ही क्रोध बढ़ता जाएगा। इसलिए क्रोध पर नियंत्रण करना हो तो क्या करना चाहिए? फिर क्रोध जब आ जाए तो क्रोध को आप शब्द और क्रिया मत दो। आपके अंदर क्रोध आया और वो क्रोध ढूंढेगा, शब्द ढूंढेगा, वो क्रियाएं ढूंढेगा, कई बार वस्तुएं भी ढूंढता है। लेकिन उस समय क्रोध को आप न क्रिया दो, न शब्द दो, न वस्तु। जहां क्रोध है वही खत्म हो जाएगा। आपको क्रोध आया? आप समझ गए? आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं मैं। आपको क्रोध आया पत्नी पर, पति पर, गुरु पर, शिष्य पर, नौकर पर, स्वामी पर, और उस समय आपको लगा कि मैं बोलूं क्या, बोलूं क्या? आप बोलो मत। आप बोलो मत। आपका क्रोध कब तक रहेगा? आपका क्रोध थोड़े समय तक रहेगा वो, और उसके बाद फिर खत्म हो जाए। और यदि आपने उसको शब्द दिया, बोल दिया, कोई क्रिया दी, अब उसके बाद क्या होगा? आपने पानी दे दिया उसको, आपने उसको जल दे दिया, क्रोध को आपने खाद दे दिया। अब आप उसकी प्रतिक्रिया आपको मालूम है। आपने गाली दी और सामने वाला आपको क्या देगा? फूल देगा। सामने वाला आपका स्वागत करेगा क्या? तो हो, आपने अच्छी गाली दी, चलो ये हम आपको चाय बना के पिलाएंगे, लो आपको हम ये लड्डू खिलाएंगे, खिलाएगा? अरे सामने वाला भी फिर आपको बहुत अच्छी गाली देगा वो, और उसके बाद फिर आप भी रुकने वाले नहीं है, बढ़ गया ना काम। आप अपना काम बढ़ा लेते हो, आप अपने क्रोध को बढ़ा देते हो, काम ऐसा करते हो जैसे क्रोध बढ़ जाए, काम ऐसा करते हो काम बढ़ जाए, काम हम ऐसा करते कि वासना बढ़ जाए, काम हम ऐसा करते कि इंद्रिय असंयम बढ़ जाए, काम हम ऐसा करते हैं कि शत्रुता बढ़ जाए। आप कौन सा काम करते हो मित्रता बढ़ाने के लिए? आप जो भी काम करते हैं परिवार में आसपास, वो शत्रुता बढ़ाने का ही काम करते हैं, मित्रता बढ़ाने का काम नहीं करते हैं। क्रोध बढ़ाने का ही काम करते हैं, घटाने का काम नहीं करते हैं। इसलिए क्रोध पर नियंत्रण, काम पर नियंत्रण, वासनाओं पर नियंत्रण का श्रेष्ठ उपाय है वासना को क्रिया न दे, वासना को शब्द न दे। आप समझ गए होंगे ना? जितना हम वासना को क्रिया देते जाते हैं, उतना ही हमारी वासना और गहरी होती जाती है। जितना हम क्रोध को क्रिया देते हैं, शब्द देते, उतना ही क्रोध हमारा और गहरा होता जाता है। इसलिए उसके नियंत्रण का श्रेष्ठतम यही उपाय है कि हम न उसको क्रिया दें और न हम उसको शब्द दें, और शब्द और क्रिया के अभाव में शांत हो जाता है, खत्म हो जाता है, वो बढ़ता नहीं है, क्योंकि बढ़ाने का अवसर उसको नहीं मिलता है। क्रोध को बढ़ाने का अवसर शब्द और क्रिया के द्वारा मिलता है, बढ़ने का अवसर मिलता है, कभी आपने ध्यान दिया होगा कि शाखाएं जितनी फैलती है ना उतनी उसकी जड़ें अंदर चली जाती है, और आप शाखा काटते जाओ तो उनके जड़ों को पोषण नहीं मिलता है, शाखाओं से जड़ों को पोषण मिलता है, शाखाओं को पत्तियों से जड़ को पोषण मिलता है। वैसे हमारी क्रियाओं से, हमारे शब्द से, अभिव्यक्ति से हमारे क्रोध विकार भावनाओं को शक्ति मिलती है। और क्रोध के नियंत्रण का दूसरा उपाय आप भगवद गीता की दृष्टि से देखना। भगवान ने क्या बोला, संगात संजायते कामः कामात क्रोधो भी जायते। भगवान ने उत्तर दे दिया, आप यदि उसके बढ़ने के कारण को जानेंगे तो घटने के कारण को भी जान लेंगे। आप जानना कि रोग क्यों बढ़ा, आप रोग क्यों बढ़ा इसको यदि आप जानेंगे तो रोग को घटाने के कारण को आपको अतिरिक्त जानना नहीं पड़ेगा। भैया जो कारण बढ़ने की प्रति है वही कारण घटने की प्रति कारण। इसलिए भगवान ने कहा संगात संजायते कामः, संग से कामना पैदा होती है और काम से क्रोध पैदा होता है। संग का मतलब होता है इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष। आपने किसी को देखा, संग हुआ। आपने किसी को सुना, संग हुआ। आपने छुआ, संग हुआ। आपने खाया, सूंघा, संग हुआ। और संग हमें कामना में ले जाता है। आपने देखा, संग हुआ, और आप चाहने लगे, कामना पैदा हो गई। आपने चखा, संग हुआ, और आप और चाहने लगे। आपने छुआ, संग हुआ, और आप चाहने लगे, ये कामना हुई। ये संग हमें कामना में ले जाती, संग हमें इच्छा में ले जाता है। और जब कामना पैदा हो जाती है ना, कामना संगात संजायते कामः, यह काम शब्द का अर्थ केवल काम मत लेना। काम माने कामना, काम माने इच्छा, काम माने वासना। संग से कामना पैदा होती है, चाहने लगते हैं हम, और चाहने लगते हैं तो क्रोध पैदा होता है क्या? संगात संजायते कामः, और कामात क्रोधो भी जायते। क्या कामना होने मात्र से हमको क्रोध होता है क्या? हाँ, यहां आपको समझना चाहिए। यहां काम के दो बेटे हैं, काम के दो बेटे हैं। काम के दो बेटे कौन? क्रोध और लोभ। हमारी कामना जब तृप्त होती है तो वो कामना लोभ में रूपांतरित हो जाती है, और कामना जब अतृप्त रह जाती है तो क्रोध में रूपांतरित हो जाती है। आपको मालूम पड़ा क्रोध का मूल? कामना का अतृप्त रह जाना। कामना जब तृप्त होती है तो आदमी को क्या लगता है, अब शांति मिलेगी? शांति नहीं मिलती है, और चाहिए। आहा बहुत अच्छा लगा, खाए आहा बहुत अच्छा लगा। तो हम लोग वहां लोनावाड़ा गए नारायणी धाम देखने के लिए, और वहां क्या मां की मूर्ति हमने देखी, विग्रह। आपने देखा कि नहीं देखा? मैंने मां का जब विग्रह देखा, सचमुच ऐसा लगता है कि मानो वहां प्रत्यक्ष वो आपको देख रहे हैं। देखा और देखने के बाद और देखने की इच्छा, ओहो और देखो और देखो, क्या सुंदर प्रतिमा। ये लोभ है, ये भक्ति भी लोभ है। आपने प्रवचन सुना, ओहो क्या प्रवचन अच्छा लगा, और चाहिए भैया, और चाहिए, और प्रवचन सुना। राजा परीक्षित सुखदेव जी महाराज जी को क्या बोलते, और सुनाओ और सुनाओ। वहां सुखदेव जी महाराज जी के लिए थोड़ा भोजन करो, भूख लगी होगी जलपान करो, थोड़ा आराम करो। बोले नहीं, और चाहिए और चाहिए। भगवत प्रेम जो है ना वही आपकी भक्ति है, भगवत कामना जो है ना वही आपकी भक्ति। ये लोभ बन जाती है। कामना जब तृप्त होती है तो वो तृप्त कामना खत्म नहीं होती है, और चाहिए, ये लोभ में रूपांतरित हो जाती है ना। लोभ में रूपांतरित हो जाती, चाहे वो संसार की हो चाहे वो परमार्थ की हो। और वो कामना जब अतृप्त रह जाती है तो क्रोध आ जाता है। अब संसार में भी आप चाहते हैं और वो पूरा नहीं हो पाता है तो क्रोध आता है आपको। तो आपको क्रोध पर नियंत्रण करना है तो आपको किस पर नियंत्रण करना पड़ेगा? कामना पर। अब रास्ते पर आ गए आप, हा? आप सीधे सीधे क्रोध पर नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। आप नियंत्रण कामना पर करना चाहते हैं कि क्रोध पर करना चाहते हैं? आप क्रोध पर नियंत्रण करना चाहते हैं। आपकी समस्या कामना है कि क्रोध है? सही नहीं, नहीं नहीं, आपकी समस्या जो है ना क्रोध नहीं है, आपकी समस्या कामना है। लेकिन हम समस्या क्या समझते हैं? क्रोध। हम नियंत्रण कामना पर करना चाहते हैं कि क्रोध पर? क्रोध पर। हम क्रोध पर नियंत्रण करना चाहते हैं और क्रोध पर नियंत्रण संभव नहीं है, क्रोध हमारे हाथ में नहीं होता। जैसे मान लो, कभी आपने ध्यान दिया होगा, आपने वो क्या होता है, इनोवो बोलते क्या है, वो खाते हैं ना, थोड़ा पीते हैं लोग, इनोवो इनो इनो क्या होता है वो, आप उसको काटो और मुख में डालो और जल्दी आप नहीं करोगे तो नाक से निकल जाएगा वो। एकदम भप से निकल आता है वो, तो पाउडर टाइप का होता है, आप मुख में डालो, हाँ क्या पानी की नहीं, ऐसे भी कोई कोई करता है, पानी में डाल दो और जल्दी पियो, हवा एकदम आ जाती है, नहीं कंट्रोल से बाहर हो जाता है वो, समझ में आया? ये क्रोध का ऐसा ही होता है, एकदम ऐसा भपका है क्रोध का और उस पर आप नियंत्रण करना चाह रहे हैं, संभव नहीं है। क्रोध पर नियंत्रण संभव नहीं है, आप कामना पर नियंत्रण करो। जैसे कि मान लो कि सामने वाले के ऊपर आप क्रोधित हो रहे, क्यों? उसने काम ढंग से नहीं किया। अब यहां विवेक के द्वारा आप उस आपकी इच्छा पर नियंत्रण करो। चलो ठीक है, हमारी बात नहीं मानी तो क्या हम भी बहुत बार नहीं मानते हैं? क्या हर बार हम दूसरे की बात मानते हैं क्या? क्यों मत बाबू, हम हमेशा किसी की बात मानते हैं क्या? हम हमेशा किसी की बात नहीं मानते हैं, तो हम ये क्यों सोचे कि हम हमारी भी बात हमेशा मानते रहे? आप पत्नी की हर बात मानते हो क्या? लेकिन आप ये सोचते हो कि ना हर बात हमारी माने? देखो आप बहू की हर बात मानते हो क्या? नहीं। लेकिन आप क्या चाहते हो? कि बहू हमारी हर बात माने। आप बहू के इशारे पर नाचते हो क्या? लेकिन आप क्या चाहते हैं? वो हमारे इशारे पर नाचे। ये तो बेवकूफी है, यही तो नासमझी है, यही तो हमारी कामना है। आप अपने इच्छाओं पर नियंत्रण कर लो, आप जो चाहते हैं ना उस पर नियंत्रण संभव है, विचार के द्वारा, विवेक के द्वारा। आप अपने इच्छा पर, कामना पर आप नियंत्रण कर लो, और इच्छा पर कामना पर नियंत्रण आपका हो गया तो आपको क्रोध पर नियंत्रण करना नहीं पड़ेगा, फिर क्रोध पर नियंत्रण करना नहीं पड़ेगा। एक बात बता देता हूं, आलंदी में एक महात्मा हुए हैं, उन्होंने बड़ा प्रचार किया, वेदांत का प्रचार किया, विचार सागर का, गांव गांव में उन्होंने प्रचार किया। उनका नाम था विनायक नारायण जोशी, बड़े श्रेष्ठ महापुरुष थे और सदग्रस्त थे। उन्होंने पूना का अपना मकान बेचा, सब कुछ संपत्ति बेची और आलंदी में आए, साधकाश्रम नाम से आश्रम खोला और 40-50 विद्यार्थी उन्होंने रखे और उनको भोजन, आवास, पुस्तकें आदि देते थे और वो वेदांत पढ़ाते थे, सबको वेदांत पढ़ाते थे। उनके पास एक तानपुरा था, वो तानपुरा बजाते थे और उनको बड़ा प्रिय था तानपुरा। जैसे खाली हो जाते थे वैसे तानपुरा लेके बैठ जाते थे, कार्यक्रम के लिए बाहर गए। अब बच्चे स्वतंत्र, जब बड़ा आदमी नहीं रहता है तो बच्चे स्वतंत्र हो जाते थोड़ा, और स्वतंत्र हो जाए तो फिर उठपटांग करते, ज्यादा सोना, घूमना, दौड़ धूप। अब एक बच्चा था, वो गया उनके कक्ष में और वहां तानपुरा टंगा हुआ था, तानपुरा उसने उठाया अपने गले में डाल दिया और वो बजा बजा के नाचने लगा। अब छीना झपटी बच्चों की होने लगी, बोले हमको लो हमको दो, और पता नहीं कैसे गिर गया वो, और गिरा पुराना था वो, फूट गया फूट गया। अब सोचो आप बच्चों का, अब फूट गया, अब तान पूरा फूट गया, अब क्या होगा, फूटा हुआ टांग दिया खूटी पर। अब उधर से वो आए दादाजी, दादाजी बोलते थे उनको। अब जिन बच्चों के द्वारा वो फूटा था वो बच्चे आ ही नहीं रहे थे उनके सामने। जब वहां प्रवचन में बैठे तो उन्होंने पूछा कि भैया अमुक वो बच्चे नहीं आए, बुला उसको क्या हो गया, स्वास्थ्य ठीक है, बुला लिया, बच्चे आके बैठ गए। फिर प्रवचन समाप्त होने के बाद जब सब लोग गए, उनको नहीं मालूम था, उन्होंने पूछा भैया तुम चेहरा लटका के क्यों बैठे हो, बात क्या है? तो उन्होंने कहा कि दादाजी, बोले वो तानपुरा फूट गया, वो हमारे हाथ से गिर गया और वो फूट गया। जैसे उन्होंने सुना तो हंसने लगे हो, और हंसते हुए उन्होंने बोला कि वो क्या आत्मा था क्या? देखो ध्यान देना, ये इसको बोलते विवेक, उन्होंने कहा कि वो तानपुरा कोई आत्मा था क्या, कि परमात्मा कि जो गिरे और फूटे भी नहीं? अरे तानपुरा था वो नश्वर चीज थी, और वो गिरेगी तो फूटेगी। और बोले ऐसे ही वो बूढ़ी हो गई थी, बोले जैसे आदमी गिर जाता है तो सबसे पहले क्या होता है, टांग टूट जाती है, और आदमी हमेशा बाथरूम में जरूर गिरता है। बाथरूम में आप ऐसा बना लेते हो सारी सुविधा, बाथरूम में गिरने की सारी सुविधाएं बना लेता है आदमी। जो गिरने के केस होते हैं वो बाथरूम के केस होते हैं कि बाहर के केस होते हैं? बहुत बड़े बड़े लोग कहां गिरते हैं, बाथरूम में, क्यों? वहां सारी सुविधा है, गिरने की सारी सुविधा है, सब फिसलन है, और जितना आप पकड़ने की कोशिश करोगे उतना आप गिरते जाओगे, और गिरोगे तो टांग टूटेगी, बुढ़ापा है, वृद्धावस्था है। ये कोई आत्मा है क्या, ये शरीर कोई आत्मा है परमात्मा? दादाजी ने कहा कि वो तो तानपुरा था लकड़ी का। अरे बोले वो तो परमात्मा आत्मा थोड़ी था कि गिरे और फूटे नहीं, फूट गया। बोले क्या हो गया, फूट गया वो तो, बोले किसी के भी हाथ से गिरता तो भी, क्रोध किया क्या उन्होंने? देखो विवेक, आप गर्दन हिला करके मेरी बात का समर्थन तो कर गए और आप बहुत अच्छी प्रकार से समर्थन कर गए, 100% वोट मिले मुझे इस बात पर लेकिन प्रैक्टिकल जीवन में आप, आपके सामने ऐसी कोई घटना घट जाए तो प्रयत्न करेंगे, आपके बहू के द्वारा कुछ गड़बड़ हो जाए तो, और आपके बेटी के द्वारा हो जाए तो, देखो विवेक है वहां पर, विवेक है। जब बेटी के द्वारा कोई नुकसान हो तो आप क्या बोलोगे? अरे चलो कोई बात नहीं, हाँ उठा लो उठा लो, हा? हो जाता है। और वही काम यदि बहू के हाथ से हो जाए तो आप बोलेंगे खाई नहीं क्या, हाँ तुम्हारे माता पिता ने यही सिखाया है क्या, न जाने पता नहीं क्या क्या बोल दे हम लोग, हाँ ये अविवेक है, ध्यान देना। विवेक जगता है, बेटी के समय हमारा विवेक जागृत रहता है, और बहू के समय विवेक खो देता है, और उसके बाद में हम कहते हैं कि हमारी बहू अच्छी नहीं है। इसलिए ध्यान देना, ये भावनाओं पर नियंत्रण करने के लिए, कामना पर नियंत्रण करना बहुत आवश्यक है। विवेक के द्वारा हम इच्छाओं पर नियंत्रण कर ले, और जैसे इच्छा पर नियंत्रण कर लेंगे ना तो आपको फिर क्रोध पर नियंत्रण करना कठिन नहीं है। कठिन क्या, यदि आपके कामना पर यदि नियंत्रण होना तो आपका क्रोध आएगा ही नहीं, पहली बात क्रोध उठेगा ही नहीं, क्रोध समूल नष्ट होगा यदि कामना इच्छा पर आपका नियंत्रण है। और जितना अनियंत्रित इच्छा होगी उतना क्रोध होगा। कभी आपने ध्यान दिया होगा छोटे बच्चों पर आप देखना, छोटा बच्चा जितनी चीज चाहता उतना नहीं मिले तो एकदम आवेश में आ जाता है। उसके मन में यदि प्रबल इच्छा है तो क्रोध भी प्रबल आएगा, और सामान्य इच्छा हो तो आप समझा बुझा कि उसको आप शांत कर लेंगे। हाँ ऐसे हमारा मन भी एक ही बच्चे की तरह है, और यदि चाहता बहुत हो तो उठपटांग भी क्रोध भी करता है, और चाह पर नियंत्रण हो तो क्रोध नहीं करता है। इसलिए नारायण ये क्रोध का जो मार्ग है ना, सीधे सीधे क्रोध का मार्ग ये बहने का मार्ग है ना। क्रोध आया और हम ऐसे बह जाते हैं, हमारे सारे विवेक सारी समझदारियां उस क्रोध के समझ में आए ना, बाढ़ में सब बह जाता है। इसलिए तैरने का मार्ग है अक्रोध, तैरने का मार्ग है अज्ञान, बहने का मार्ग और ज्ञान, तैरने का मार्ग, ये पुरुषार्थ का मार्ग है। इसमें आपको करना पड़ता है, अब ध्यान देना, यहां पुरुषार्थ है, बिना पुरुषार्थ परमार्थ संभव नहीं है, और बिना पुरुषार्थ ये संसार है। काम, क्रोध, लोभ ये हमारे जीवन का पुरुषार्थ नहीं है, लेकिन सत्संग पुरुषार्थ है। बिना किए आपका सत्संग नहीं होगा, बिना किए जप नहीं होगा, बिना किए ध्यान नहीं होगा, बिना किए आपके जीवन में परमार्थ नहीं आएगा। लेकिन संसार आपके जीवन में बिना किए आ जाता है। इसलिए नारायण इस मार्ग को यहां पर प्रिय मार्ग कहा है, ये प्रवृत्ति मार्ग है ना, प्रवृत्ति मार्ग। और जो परमार्थ का जो मार्ग है ये निवृत्ति मार्ग है, ये तैरने का मार्ग है, ये उठने का मार्ग है, और ये श्रेय मार्ग है, श्रेय मार्ग। इसलिए कहते हैं अन्य श्रेय अन्य दुतैव प्रेय, एक श्रेय मार्ग और दूसरा प्रेय मार्ग। ते उभे नानार्थे पुरुषम सेनिता, और ये दोनों मार्ग प्रयोजन प्रलोभन दिखाकर अपनी और साधक को खींच लेते हैं, जीवात्मा को खींच लेते हैं, वो बांध देते हैं। ये संसार के जो पदार्थ है ना, ये प्रयोजन दिखा करके हमको अपने से अटका देते हैं। कभी आपने ध्यान दिया होगा, प्रयोजन दिखाकर ये भौतिक पदार्थ हमें अटका देते हैं, सीनीतः माने वो बांध देते हैं, हम बंध जाते हैं। क्यों? आपको बहुत अच्छा लगा, स्वाद मिला, सुख मिला और हम बंध गए। हम वस्तु से नहीं बंधते हैं, हम वस्तु से जो मिलने वाला स्वाद, वस्तु से मिलने वाला जो सुख है ना, उससे बंध जाते हैं। आप कपड़े से नहीं बंधते हैं, कोई नहीं बंधता है, बहुत अच्छे लगे कपड़े पहने तो बहुत अच्छे दिखे, आप बहुत आराम मिला तो आप बंध गए। आप किससे बंधे? आप कपड़े से बंधे कि उससे मिलने वाले आराम से बंधे, उससे मिले सौंदर्य से बंधे? आपके शरीर पर कपड़े जच गए, आप बंध गए, और आपने पहना और आप बिल्कुल बेकार लगने लगे तो आप कपड़े पहनोगे? आप डांटोगे नौकर को, ये क्या कपड़े पहना दिया यार तुमने? आप भोजन कर रहे थे, बहुत अच्छा लगा, और दूसरे दिन आप बोलोगे भैया वही बना लो, तो आप बंध गए कि नहीं? किससे बंधे? भोजन से बंधे कि स्वाद से बंधे? यही है, ये जो उपाय है ना, ये हमें ले जाता है सुख दिखा के, हमें बांध देता है भौतिक पदार्थ, ये सुख दिखाकर हमको बांध देते हैं, सौंदर्य आकर्षण दिखा करके बांध देते हैं, और ये अध्यात्म भी बांध देता है। ते उभे, आपने सत्संग किया, आपको बहुत अच्छा लगा, अब आप क्या बोलोगे? भैया अब सत्संग सुनाओ, है ना, 7:30 से 8:30 बजे, हा क्या अच्छा सत्संग, आपको मालूम पड़ा भगवद गीता का सत्संग है, आपको मालूम पड़ा भागवत का सत्संग, आपको मालूम पड़ा उपनिषदों का सत्संग, आपको बहुत आनंद आया, तो आप भागे भागे आओगे, भागे भागे आओ। ये परमार्थ भी आपको बांध देता है, भक्ति भी आपको बांध देती है, योग आपको बांध देता है, ध्यान आपको बांध देता है, आप ध्यान करो आपको आनंद आए, एक क्षण भी आपको आनंद आए ध्यान में, एक क्षण का भी आनंद आपको मिला ध्यान में, तो ध्यान आपको आकर्षित करेगा। आप सब कुछ छोड़ेंगे, भैया बोलिए 2 मिनट हमको बैठने, ज्यादा नहीं, हम 2 मिनट ध्यान करते हैं, 2 मिनट। ये कहते उभे नानार्थे, अनेकों प्रकार के अर्थ, अनेकों प्रकार के प्रयोजन दिखाकर पुरुषम सीनीतः, पुरुष को, जीवात्मा को ये बांध देते हैं। लेकिन ये दोनों मार्ग दो हैं अलग अलग। तयोः आददानस्य साधु भवति। श्रुति कहती कि इन दोनों मार्ग जीवात्माओं को अपने तरफ खींचते हैं, प्रयोजन दिखा दिखा कर आकर्षित करते हैं, लेकिन श्रेय आददानस्य, जो श्रेय परमार्थ का मार्ग स्वीकार करता है ना, वो साधु भवती, वो साधु होता है। साधु हा? साधु का मतलब ऐसे इस कपड़े वाला साधु मत समझना। साधु का मतलब तो वो शुभ होता है, साधु का मतलब वो संत होता है। अब वो किसी भी वेशभूषा में क्यों ना हो, और जो ये श्रेय मार्ग छोड़ देता है वो बोले वो साधु भवती, वो साधु भवती, परमार्थ मार्ग वाला साधु भवती, और संसार के मार्ग वाला स्वादु। वो स्वाद का है ना, प्रिय का मार्ग है, प्रियता आनंद, इसलिए कहते हैं हियते अर्थात य उ प्रेयो वृणीते। हाँ, बोले कि वो संसार के मार्ग में पढ़कर वो पतित हो जाता है। इस प्रकार पहले श्लोक में बहुत सुंदर बातें कही हैं। आज प्रवचन को ही विराम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।